आगे सबक देखिए भाई, व नातुस्मी लल मबनी यीला नातुस्मी हल मोरब इहतराजुन अन नहविला गुलाम रजुलिन जरीफन अल अव्वलु बिर्रफ़ई सिफ़तुन लिन्नाति अयलस्सानी वमा बादहु इहतराजुन अन मिस्लिला रजुल जरीफ करीमुन फिद्दारी मुफ्रदन حال من ضمير مبني والعامل فيه مبني احتراز عن مثل لا رجل حسن الوجه يليه حال بعد حال او صفه مفردا احتراز عن المفصول نحو لا غلام فيها ظريف بھئی گزشتہ سبق میں साहिब काफिया ने आपको बतलाया था कि लाए नफी जिंस पर जब हमज़ा इस्तेफ़हाम दाखिल हो जाए तो ला का अमल नहीं बदलता, यानी हमजा के दाखिल होने से पहले जैसे बास सूरतों में ला का इसम मबनी अलल फता होता है और बास सूरतों में ला का इसम मनसूब होता है, तो हमजा के दाखिल होने के बाद भी ला उसी तरह अमल करेगा। जैसे ला रजुला फिदार, अब ये ला का इसम मबनी अलल फता है क्योंकि ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है। पहली दो शर्तें तो पूरी हैं, साथ भी मिला हुआ है और नकिरा भी है, लेकिन मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं, तो ये मबनी अलल फता है भाई। तो इस पर अगर आप हमजा ले आए अला रजुला फिदार, तो अब भी ये मबनी ही रहेगा। और अगर ला का इसम मनसूब हो यानी मुजाफ भी हो, तीसरी शर्त भी पूरी हो, ला गुलामा रजुलिन फिदारी, ये गुलामा रजुलिन मनसूब है, तो इस पर अगर हमजा इस्तेफाम दाखिल करेंगे तो अब भी ला उसी तरह अमल करेगा, अला गुलामा रजुलिन फिदार। और साहिब जामी ने वजह जिक्र की थी कि भाई जब कलिमा इस्तेफाम दाखिल हो जाए किसी आमिल पर, तो उस कलिमा इस्तेफाम के दाखिल होने से उस आमिल का अमल बदलता नहीं, तो यहां पर भी ला पर हमजा दाखिल हुआ है तो ला का अमल नहीं बदलेगा। और फिर कलाम का माना क्या होगा, तो साहिब काफिया ने बतलाया था कि फिर कलाम का माना या तो इस्तेफाम ही होगा, मुतकल्लिम कोई बात पूछना चाह रहा है, जैसे अला रजुला फिदार, यहां पर वो हकीकतन इस्तेफहाम कर रहा है, एक बात पूछ रहा है, ये हमजा है भी किस लिए, इस्तेफहाम के लिए, और मुतकल्लिम भी क्या कर रहा है, इसके जरिए इस्तेफहाम ही कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, अला रजुला फिदारी, क्या कोई आदमी इस घर में नहीं है। और कभी कभार ये हमजा जो आएगा तो फिर ये अर्ज का फायदा देगा, अला नुजूल अलका इंदाना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, फनुहसिन इलैका, तो हम एहसान करते। अब यहां पर याद रखो ये जो हमजा इस्तेफाम आया है ये वजह तो इस्तेफाम के लिए है, लेकिन यहां पर अब ये इस्तेफाम का फायदा नहीं दे रहा बल्कि अर्ज का फायदा दे रहा है। भाई इस्तेफाम का फायदा क्यों नहीं दे रहा, वजह यह है कि अला नुजूल लका इंदाना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाए। देखो ये तो अपने पास आने का पूछ रहा है मुतकल्लिम, और मुतकल्लिम को ये इलम है कि नहीं कि ये मुखातब उसके पास नहीं आया, मुतकल्लिम को तो इलम है, तो फिर इस सूरत में ये सवाल नहीं हो सकता भाई, सवाल उस चीज के बारे में होता है, मुतकल्लिम को इलम है कि ये मुखातब मेरे पास नहीं आया, जब इसको इलम है फिर ये सवाल करने का क्या माना, अला नुजूल लका इंदना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाए। तो क्योंकि जब एक चीज का जब इंसान को इलम हो तो उसके बारे में वो सवाल नहीं करता भाई, तो ये यहां पर जो है ये हमजा अर्ज का फायदा दे रहा है, मुतकल्लिम मुखातब से दरखास्त और गुजारिश कर रहा है कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपका इकराम करेंगे, आपको हमारे पास आना चाहिए। तो यहां पर ये हमजा जो है अर्ज का फायदा देगा, या कभी कभार ये हमजा जो वजह तो है इस्तेफाम के लिए लेकिन जब लाए नफी जिंस पर दाखिल होगा तो फिर ये तमन्ना का फायदा देगा, अला मा फअशरबहू, एक ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं है और वहां पानी मिलने की उम्मीद भी नहीं है, अब मुतकल्लिम कहता है अला मा, क्या पानी मौजूद नहीं है, यह अब इस्तेफाम नहीं हो सकता क्योंकि उसको भी पता है यहां पानी नहीं है और पानी मिलने की उम्मीद भी नहीं है, तो जब एक चीज का इलम है फिर उसके बारे में सवाल नहीं हो सकता। हां अगर ऐसी जगह है जहां पानी मिलने की उम्मीद है फिर यह तमन्ना के लिए नहीं होगा। अलामा फिर पानी के बारे में वो पूछ रहा है कि क्या पानी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये हमजा जब लाए नफी जिन्स पर दाखिल हो जाए तो कभी यह हकीकतन इस्तेफाम के लिए होगा और कभी कभार फिर ये मजाजन जो है आर्ज या तमन्नी के लिए होगा। इस पर फिर इश्काल होता है कि साहिब काफिया ने यह मसला यहां क्यों जिक्र फरमाया, क्योंकि यह बात तो वाजह है कि आमिल पर जब हमजा इस्तेफाम दाखिल हो जाए तो उसका अमल बदलता नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी यह कहने की कि लाए नफी जिन्स पर हमजा दाखिल हो जाए तो भी उसका अमल नहीं बदलता। वजह यह कि इस सूरत में हासिल माना बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हासिल माना बदल रहा है, या यूं कहें माल के एतबार से कलाम बदल रहा है। माल कहते हैं नतीजे को, नतीजे नतीजे और माल के एतबार से कलाम नफी पर दलालत नहीं कर रहा। ला रजुला फिदार, इस घर में कोई आदमी नहीं है, अब इस वक्त तो ये नफी पर दलालत कर रहा है ये कलाम, लेकिन अगर आप हमजा ले आएंगे अला रजुला फिदार, अब ये अब ला नफी का फायदा तो अभी भी दे रहा है लेकिन हासिल कलाम के एतबार से आप देखें तो ये इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है, ये नफी की कोई खबर नहीं दी जा रही। पहले जब आपने कहा था ला रजुला फिदार, कोई आदमी इस घर में नहीं है, तो आप खबर दे रहे थे दूसरे को, और अब आप क्या कर रहे हैं? इस्तेफाम कर रहे हैं। तो माल के एतबार से चूंकि कलाम बदल गया, अब वो नफी के माना का फायदा नहीं दे रहा, बल्कि या तो उसमें इस्तेफाम है या अर्ज है या तमन्नी है। तो सवाल पैदा होता है कि माल के एतबार से अब यहां ला नफी का फायदा नहीं दे रहा, तो क्या अब भी ये ला नफी जिन्स अमल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसकी नफी तो खत्म हो चुकी है भाई, क्योंकि माल के एतबार से कलाम नफी का फायदा नहीं दे रहा। तो साहिब काफी इसलिए यह मसला यहां बतलाने के लिए लाए कि हमजा के दाखिल होने के बाद भी ला अमल करेगा अगरचे वहां से नफी का माना खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद साहिब जामी ने आपको यह भी बतलाया था कि जब ला अर्ज के लिए हो जाए, हमजा इस्तेफाम उस पर दाखिल हो गया और अब किस चीज का फायदा दे रहा है यह कलाम? अर्ज का। तो जब ला अर्ज के लिए हो जाए तो फिर उस वक्त भी ला उसी तरह अमल करेगा जैसे किस तरह अमल करता था हमजा के दाखिल होने से पहले। यह मसला इमाम सीबुवै ने जिक्र नहीं फरमाया। साहिब काफिया जो है इस काफिया के अंदर अक्सर वो मसाइल जिक्र फरमाते हैं जो इमाम सीबुवै ने जिक्र फरमाए हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इमाम सीबुवै रहमहुल्लाह ने तो यह अर्ज की सूरत में नहीं फरमाया कि ला उसी तरह अमल करेगा जैसे हमजा के दाखिल होने से पहले अमल करता था, ये इमाम सीबुवै ने जिक्र नहीं फरमाया। तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि यह इमाम सिराफी रहमहुल्लाह ने जिक्र फरमाया है और उन्हीं का इत्तेबा किया है अल्लामा जजूली ने भी और अल्लामा इब्ने हाजिब यानी साहिब काफिया रहिमाहुमल्लाह ने भी भाई। लेकिन अल्लामा अंदलुसी ने उन दोनों को रद्द किया है और फरमाया है कि नहीं ये गलत है भाई, इसलिए क्योंकि जब ला अर्ज के लिए हो जाए तो उस वक्त फिर ये हुरूफ अफाल में से बन जाता है। किस में से? हुरूफ अफाल। हुरूफ अफाल वो हुरूफ जो हमेशा फेल पर दाखिल होते हैं जैसे इन है, लौ है और हुरूफ तहजीज हैं जो किसी को उभारने के लिए आते हैं, तो ये हमेशा अफाल पर दाखिल होते हैं, वहां हमेशा लफ्जों में फेल होगा। अगर लफ्जों में नहीं है तो तकदीरन आपको निकालना पड़ता है भाई। तो यहां पर भी जब ला अर्ज के लिए हो जाए तो ये भी ये हुरूफ अफाल में से हो जाएगा, लिहाजा इसके बाद लफ्जों में यह तकदीरन फेल होना चाहिए। और अगर इसम इसके बाद आएगा भी तो वह इसम मंसूब होगा और वह फेल महजूफ उसको नसब दे रहा होगा, जैसे अला जैदन तुकरिमुहु, तो यह अला के बाद फेल आना चाहिए था क्योंकि यह हुरूफ अफाल में से अब हो चुका है, लेकिन वह फेल हजफ कर दिया गया और यह जैदन मंसूब है, इसको वह फेल महजूफ नसब दे रहा है। और फिर उसके बाद तमन्ना की भी मिसाल जिक्र की और आगे जिक्र किया कि तमन्ना की सूरत में भी देखो अल्लाह का अमल नहीं बदल रहा। तो इस पर इश्काल होता है कि अरबी के एक फसीह शायर ने कहा है अला रजुलन जजाहुल्लाहु खैरा, तो इसके अंदर देखो अला रजुलन ये ला का अमल बदल गया, होना तो क्या चाहिए था अला रजुला क्योंकि इसमें पहली दो शर्तें तो पूरी हैं, रजुल का लफ्ज ला के साथ मिला भी हुआ है, दरमियान में फसल नहीं, और नकेरा भी है, लेकिन ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं, तो इसको तो मबनी होना चाहिए था, मबनी अल फता अला रजुला यूं होना चाहिए था, लेकिन वो अरबी का फसीह शायर क्या कहता है अला रजुलन। और याद रखो ये तमन्ना के लिए, यहां ये तमन्ना के लिए है, शायर कहता है काश के कोई आदमी होता, कि काश कोई आदमी होता और मेरी आशिका के घर के रास्ते तक वो मेरी रहनुमाई कर देता तो अल्लाह उसको जजाए खैर देते। तो यहां पर ये तमन्ना के लिए है। देखो तमन्ना की सूरत में ला का अमल बदल गया। तो साहिब जामी ने उसके दो जवाब जिक्र किए, एक इमाम खलील इब्ने अहमद रहमहुल्ला और एक इमाम यूनुस रहमहुल्ला, उनका जवाब जिक्र किया। इमाम खलील इब्ने अहमद मैंने बताया कि ये उस्ताज हैं इमाम सीबुवे के और 170 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। ये फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह है ये वो लाए नफी जींस नहीं है जिस पर हमजा दाखिल हुआ हो, बल्कि ये अल्लाह पूरा एक ही हर्फ है। ऐसा नहीं है कि ला अलग था और हमजा उस पर अलग दाखिल हुआ, नहीं, ये अल्लाह पूरा एक ही हर्फ है और ये तहजीज के लिए है भाई। इसको वजह ही किस लिए किया गया है, तहजीज के लिए, उभारने के लिए। तो असल में कलाम यूं है अला तुरूना नी रजुलन, अला तुरूना नी रजुलन, और ये किस माना में है, हल्ला तुरूना नी रजुलन, तुम लोग क्यों मुझे कोई आदमी नहीं दिखाते जो मेरी रहनुमाई करे जी। तो इमाम खलील इब्ने अहमद रहमतुल्ला क्या फरमाते हैं कि ये अला मुस्तकिलन तहजीज के लिए वजा है, जबकि यूनुस नहवी रहमहुल्ला वो फरमाते हैं कि ये वही लाए नफी जींस है और इस पर हमजा इस्तेफाम दाखिल हुआ है। तो फिर सवाल पैदा हुआ, फिर तो अला रजुला होना चाहिए था बगैर तनवीन के, और यहां तो अला रजुलन तनवीन के साथ है। तो वो जवाब देते हैं कि ये जो तनवीन इस पर लाई गई ये जरूरत शेरी की बिना पर है, असल में हकीकत में रजुल मबनी अल फता ही है अला रजुला, लेकिन फिर तनवीन लाना पड़ी शायर को क्योंकि उसके साथ शेर का वजन सही नहीं बन रहा था। तो ये जो तनवीन आई है ये जरूरत शायरी की बिना पर है, और मालूम हुआ ला अभी भी उसी तरह अमल कर रहा है जैसे कि हमजा के दाखिल होने से पहले अमल कर रहा था। हमजा के दाखिल होने से पहले ला रजुला ये मबनी अल फता होना चाहिए था, अभी भी मबनी अल फता है, लेकिन तनवीन किस लिए लाई गई, जरूरत है। तो हकीकत में ये मबनी अल फता ही है भाई। और ये मैंने बताया अला तुरूननी रजुलन, ये बाबे इफ़ाल से है, अरा यूरी से। तुरूना तुरूना ये जमा मुखातब का सिगा है, जमा मुजक्कर मुखातब का, यूरी यूरियानी यूरूना, तुरी तुरियानी यूरीना, तुरी तुरियानी तुरूना, और उसी के साथ नून विकाया और या जमीर जुड़ गई तो तुरूननी। अब आइए आज के सबक पर, कहते हैं वनातुस्मी लल मबनी ये ला नातुस्मी हल मुआरब इहतराज उन नहवी ला गुलाम रजुल इन जरीफा। पहले मतन देख लीजिए भाई, कहते हैं वनातुल मबनी यिल अव्वलु मुफ, तवज्जो से भाई, वनातुल मबनी यिल अव्वलु मुफरदन यलीहि मबनियुं व मुआरबुन रफ़ऊं व नस्बन नहवु ला रजुल जरीफा व ज़रीफ़ुन व ज़रीफ़न व इल्ला फल इराबु। मतन मिल गया सारा भाई। अब ये लाए नफी जिन्स के तवाबे हैं उनको बयान करने लगे हैं, लाए नफी जिन्स के जो तवाबे हैं उनको बयान करने लगे हैं। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि बाकी जो मामूलात अब तक जिक्र हुए उन पर बराह रास्त आमिल दाखिल होता है और उनको रफा नसब या जर देता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आमिल उनमें बराह रास्त अमल नहीं करता बल्कि वो माकबल के ताबिअ होती हैं। तो ये जो तवाबिअ हैं ये पांच हैं भाई। कितने हैं? जो माकबल के ताबिअ होते हैं, आमिल बराह रास्त उनमें अमल नहीं करता। मसलन जैसे देखो सिफत है, सिफत पर वो ही एराब आता है जो मौसूफ पर हो, सिफत अपने मौसूफ के ताबिअ होती है, तो सिफत कहलाएगी ताबिअ और मौसूफ कहलाएगा मतबूअ। तो जो पहले आए वो कहलाएगा मतबूअ और जो बाद में आए वो ताबिअ। तो सिफत तवाबिअ में से है। عامل براہ راست صفت کو رفع نصب یا جر نہیں دیتا بلکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف پر رفع آئے گا تو صفت پر بھی رفع، موصوف پر نصب یا جر آئے گا تو صفت پر بھی نصب یا جر۔ تو صفت کس میں سے ہے؟ توابع میں سے، اور توابع کل پانچ ہیں۔ نمبر ایک صفت، نمبر دو ہے تاکید، بھائی تاکید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر آتا ہے، تو تاکید بھی کس میں سے؟ توابع میں سے۔ اسی طرح معطوف و حرف جو ہے، معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علیہ پر ہو، تو معطوف و حرف بھی توابع میں سے ہے۔ اسی طرح بدل جو ہے، بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو، اور اسی طرح عطف بیان ہے، عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علیہ پر آئے۔ بھائی تو یہ پانچ کیا ہیں؟ توابع۔ کون کون سے؟ صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، معطوف بحرف ہے، اور عطف بیان ہے۔ یہ آگے مجرورات کا بیان آئے گا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو تفصیل سے بیان کریں گے، سارے توابع کو۔ تو عام توابع وہاں سارے بیان کریں گے، لیکن یہ لائے نفی جنس اس کے توابع کو بالخصوص یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس کے توابع کا حکم ذرا مختلف ہے۔ بھائی عام توابع سے کیا ہے؟ اس کا حکم ذرا مختلف ہے، اس لیے کیونکہ لا نفی جنس کا اسم بعض صورتوں میں مبنی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں معرب ہوتا ہے۔ مبنی ہو تو کس طرح توابع کو پڑھیں گے، اور معرب ہو تو توابع پر کون سا اعراب آئے گا۔ باقی عام توابع سے ان کا حکم کچھ مختلف ہے، اس لیے اب اس کو یہیں پر بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے بھائی، یاد رکھیے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے اس میں دو صورتیں ہیں، آپ نے پڑھا، کبھی وہ مبنی ہوگا، لا رجل فی الدار، یہ رجل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے۔ اور کبھی لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا جب اس میں تینوں شرطیں پوری ہوں، لا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہو، نکرہ بھی ہو، اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہو، جیسے لا غلام رجلن فی الدار۔ اب یہ غلام رجلن یہ منصوب ہے، تو لائے نفی جنس کا اسم کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور کبھی معرب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو صاحب کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے، اس کی جو صفت ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی مبنی بنا لیں، اور آپ چاہیں تو اس کو معرب رکھیں۔ جب آپ صفت کو بھی مبنی بنائیں گے تو اس پر وہی حرکت آ جائے گی جو ما قبل لا کے اسم پر تھی۔ جیسے لا کے اسم مبنی علی الفتح تھا، اسی طرح اس صفت بھی کیا ہوگی؟ مبنی علی الفتح۔ اور آپ چاہیں تو معرب بھی بنا سکتے ہیں، اور پھر معرب ہونے کی صورت میں آپ اس صفت پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کتاب پر بھائی، یہ دوسری سطر میں آ رہا ہے، یہ جہاں سے آج کا سبق شروع کیا اس کی دوسری سطر میں ہے، لا رجلا ظریفا کریم فی الدار، یہ مثال مل گئی جی۔ اب دیکھو لا رجلا، یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور مبنی علی الفتح ہے، تو یہ جو اسم جو مبنی علی الفتح ہے، اس کی صفت، اس کی جو پہلی صفت ہے، جیسے رجل کے بعد ایک صفت ظریفن آ رہی ہے اور ایک صفت کریمن آ رہی ہے، اور یہ فی الدار خبر ہے لا کی، تو ظریفن صفت اول اور کریمن صفت ثانی۔ تو یاد رکھنا، جب لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہو تو اس کی صفت جو ہے وہ مبنی بھی ہو سکتی ہے اور معرب بھی، کب؟ جب وہ پہلی صفت ہو۔ تو یہاں دیکھو ظریفن یہ کیا ہے؟ پہلی صفت ہے، اس کو آپ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جب معرب پڑھیں تو پھر اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی۔ لیکن اس صفت کے اندر پھر تین شرطیں ضروری ہیں بھائی، پھر ہی آپ اس کو مبنی علی الفتح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ کہ یہ پہلی صفت ہونی چاہیے، جیسے ظریفن یہ پہلی صفت ہے اور کریمن دوسری صفت ہے، تو ظریفن اس میں پہلی شرط پوری ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری شرط کہ وہ صفت مفرد ہونی چاہیے، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، یہ ظریف بھی کیا ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے اس اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، درمیان میں فصل نہ ہو، اور یہاں پر بھی یہ ظریف جو ہے رجل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں فصل نہیں۔ تو اس قسم کی جو صفت ہے، جو پہلی صفت ہو मुफरद हो, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो और उस मबनी के साथ मिली हुई हो, तो इसके इसको मबनी भी पढ़ सकते हैं और मुअरब भी। मबनी पढ़ेंगे तो उसी की तरह जैसे रजुल मबनी अल फता है, इसी तरह इस सिफत को भी मबनी अल फता आप पढ़ सकते हैं। ला रजुला जरीफा करीम उन फिदार, ला रजुला जरीफा, रजुल मबनी अल फता है तो जरीफ सिफत अव्वल को भी आप मबनी अल फता पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि ये तीनों शर्तें पूरी हो, पहली सिफत हो, मुफरद हो, मुजाफिया मुशाबे मुजाफ ना हो और उसके साथ मिली हुई हो, दरमियान में फसल ना हो। और आप चाहें तो इस जरीफ पर नसब भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, यानी जरीफन भी पढ़ सकते हैं, जरीफन। और इस सूरत में ये महमूल है रजुल के लफ्जों पर, किस पर, रजुल के लफ्जों पर हमल करते हुए जरीफन इस पर नसब भी पढ़ सकते हैं। भाई लफ्जों पर हमल करने का क्या माना, लफ्जों के एतबार से तो रजुल मबनी है, तो जरीफन इसको आप मौरब भी पढ़ रहे हैं और नसब पढ़ रहे हैं तो लफ्जों पर कैसे महमूल, तो जवाब पीछे गुजर चुका है भाई, ला हौला वला कुव्वतन, ला हौला वला कुव्वतन, यह कुव्वतन पर नसब क्यों पड़ा था, इसका आतफ था हौला पर, उसके लफ्जों पर हमल करते हुए, और लफ्जों के एतबार से हौला पर जो फतहा आया था वो फतहा भी नसब जैसा था, वो फतहा भी नसब जैसा था क्योंकि वो ला की वजह से आया था, यानी यानी वो जो बिना वाली हरकत आई थी ला हौला पर वो किसकी वजह से थे आई थी, ला की वजह से आई थी, जैसे कि आमिल की वजह से नसब आता है तो ये फतहा भी किसकी तरह था, नसब की तरह, तो इसी पर आतफ करते हुए वला कुवतन, इस कुवतन पर भी नसब पड़ा गया। तो यहां पर भी इसी तरह है कि ला रजुला इस पर फतहा है लेकिन ये फतहा भी किसकी तरह है, नसब यानी एराबी हरकत की तरह है क्योंकि ये ला की वजह से आया है, जैसे आमिल की वजह से नसब आता है, तो इसी के लफ्जों पर हमल करते हुए इस पर फतहा है, तो इसी जैसा एराब जरीफन पढ़ दिया क्योंकि सिफत मौसूफ के ताबे होती है, सिफत मौसूफ के तो मौसूफ पर फतहा था तो इस पर उसी जैसा एराब यानी नसब पढ़ दिया गया। तो ला रजुला जरीफन, तो जरीफन पर नसब क्यों पढ़ा गया, ला रजुला के लफ्जों पर हमल करते हुए क्योंकि वो उसकी वो जो हरकत है वो भी किसकी तरह है, एराब जैसी है। बात समझ में आ गई। और आप चाहें तो यूं कहें कि ये जरीफन मंसूब है, ये सिफत है रजुल की, तो ये इसके महल पर हमल करते हुए मंसूब है और महल के एतबार से तो रजुल मंसूब है क्योंकि ला का इसम है। मबनी का इराब कैसे बताते हैं, महलन, जा हाजा, जा हाजा, जा फेल है और हाजा उसके लिए फाइल, तो तरकीब कैसे होगी, जा फेल हाजा, ये मरफू महलन, ये मरफू महलन क्यों कहा आपने, क्योंकि हाजा मबनी है तो मबनी का इराब कैसे बताते हैं, महलन, तो लिहाजा यहां पर भी ये रजुल इस वक्त तो मबनी है लेकिन महलन मंसूब है क्योंकि ला नफी जींस का इसम है भाई, तो जब ये महलन मंसूब है तो सिफत भी उसी तरह उसके महल पर हमल करते हुए सिफत मंसूब लाएंगे, ला रजुला जरीफन। तो नसब की दो वजहें जिक्र हो गई, जरीफन सिफत जो है उस पर नसब पढ़ सकते हैं किस पर हमल करते हुए, रजुल के लफ्जों पर हमल करते हुए या रजुल के महल पर हमल करते हुए। और नीस जरीफुन के अंदर आप रफा भी पढ़ सकते हैं, ला रजुला जरीफुन, इसी रजुल के महल्ले बईद पर हमल करते हुए, क्योंकि ये ला नफी जींस किस पर दाखिल होता है, मुबतदा और खबर पर, तो यह रजुल असल के एतबार से मुबतदा है, असल के एतबार से मुबतदा, तो गोया इस रजुल के दो महल हो गए, एक है महल्ले करीब ला की वजह से यह मंसूबुल महल है और एक महल्ले बईद है कि असल में यह क्या था, मुबतदा था, तो उस एतबार से इसका महल क्या है, रफा, तो लिहाजा जरीफुन इस पर रफा भी पढ़ सकते हैं। तफसील समझ में आई, फिर दोहराएं भाई, फिर ये सारी बहस इसी के बारे में है ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। साहिब काफिया आपको बतलाएंगे कि लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी हो उसकी जो सिफत आती है तो सिफत में तीन शर्तें पूरी हों, कौन सी कि सिफत कौन सी होनी चाहिए, पहली नी सिफत मुफरद हो यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो और नी सिफत उसके साथ जुड़ी हुई हो, दरमियान में फसल ना हो, तो इस सिफत को मबनी पढ़ना भी जायज और मौरब पढ़ना भी जायज। मबनी पढ़े उसी की तरह इस पर भी फतहा पढ़ दें, ला रजुला जरीफा, और आप चाहें तो मुअरब बनाएं इसको, और मुअरब पढ़ेंगे तो फिर इस पर आप रफा भी पढ़ सकते हैं और नसब भी, ला रजुला जरीफन और ला रजुला जरीफुन दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। नसब की क्या वजह, नसब इस पर नसब पढ़ते हैं ला हौला के लफ्जों पर हमल करते हुए, क्योंकि उस पर जो फतहा आ रहा है वो तो बिना वाला है, लेकिन ये बिना वाला फतहा भी किसकी तरह है, एराब की तरह है, क्योंकि ये ला की वजह से आया है, तो लिहाजा उसी जैसी सूरत वाला एराब यानी नसब दे दिया, या इसके महल करीब पर हमल करते हुए कि ला रजुला मबनी है और मबनी के लिए महल एराब होता है, और जमहूर के नजदीक ये क्या है, मनसूबुल महल है, क्योंकि ला नसब देता है अपने इसम को, तो ये महलन मनसूब है, तो इसकी सिफत भी क्या आएगी, मनसूब, इसीलिए उस पर नसब पढ़ सकते हैं। और रफा क्यों पढ़ सकते हैं, इसके महल्ले बाईद पर हमल करते हुए, क्योंकि इसका महल्ले बाईद क्या है, ये असल में मुबतदा है, और मुबतदा क्या होता है, मरफू। मालूम हुआ इस रजुल के दो महल हैं, एक महल्ले करीब है ला की वजह से और एक महल्ले बाईद है असल की वजह से। ला की वजह से महल्ले करीब क्या, ये मनसूब है, मनसूबुल महल है, और असल के एतबार से ये मरफू है, मरफूल महल है, मुबतदा है। बात समझ में आ गई, लिहाजा ला रजुला जरीफा मबनी भी पढ़ सकते हैं, ला रजुला जरीफन नसब भी पढ़ सकते हैं, और ला रजुला जरीफुन रफा भी पढ़ सकते हैं। कितनी शर्तें हैं, तीन शर्तें, कौन सी, कि पहली सिफत हो, दूसरी शर्त वो सिफत मुफरद हो, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो, और तीसरी शर्त उसके साथ मिली हुई हो, सिफत और मौसूफ के दरमियान फसल ना हो भाई, और अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना हुई तो फिर एराब आएगा, क्या आएगा, फिर मबनी नहीं बना सकते। ला रजुला जरीफा, इस जरीफ में कितनी सूरतें थी, तीन, तीन सूरतें, तो अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना हुई या सारी ही शर्तें पूरी ना हुई तो फिर ये मबनी वाली सूरत निकाल दो, बाकी कितनी रह गई, दो, तो फिर बाकियों में दो तरह पढ़ना जायज है, बाकी सिफात पर रफा भी पढ़ना जायज महल्ले बाईद पर हमल करते हुए, और नसब भी जायज है लफ्जों पर हमल करते हुए या महल्ले करीब पर हमल करते हुए। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ। देखिए फिर किताब पर, वो जो मिसाल थी ला रजुला जरीफा, इसके अंदर तीन तरह पढ़ना जायज है, जरीफा, जरीफन और जरीफुन, और आगे जो करीमुन आया, देखो ये अब दूसरी सिफत आ गई, क्या आ गई, दूसरी सिफत आ गई, और नीज मिली भी नहीं हुई, ये फसल भी आ रहा है, तो बहरहाल इसमें वो तीनों शर्तें पूरी नहीं, जब तीनों शर्तें पूरी नहीं लिहाजा इसको मबनी अल फता नहीं पढ़ सकते, करीमा यू नहीं पढ़ सकते, हां करीमुन भी पढ़ सकते हैं और करीमन भी पढ़ सकते हैं, यह भी सिफत है किसकी, रजुल की, तो करीमन पढ़ेंगे किस पर हमल करते हुए, रजुल के लफ्जों पर हमल करते हुए या उसके महल्ले करीब पर हमल करते हुए, और करीमन पढ़ेंगे रजुल के महल्ले बाईद पर हमल करते हुए। बात समझ में आ गई, तो ये देखो करीमन ये सिफत सानी आ गई, क्या आ गई, और हमने कहा था पहली सिफत होनी चाहिए। इसी से निचली सतर में देखें ला रजुला हसन अलवजही, ये हसन अलवजही, हसन मुजाफ है, अलवजही मुजाफोन इले, और ये भी सिफत है रजुल की, और खबर फिदार महजूफ है, तो इसमें देखो हसन अलवजही ये पहली सिफत भी है और साथ भी मिली हुई है, लेकिन मुफरद नहीं है बल्कि मुजाफ हो रही है, तो जब मुजाफ हो रही है तो इसको मबनी अल फता नहीं पढ़ सकते, बाकी सब में वो रफा और नसब दोनों पढ़ सकते हैं, तो यहां भी हसन अल वजही भी पढ़ सकते हैं और हसन उल वजही भी पढ़ सकते हैं। हसन अल वजही पढ़ेंगे किस पर हमल करते हुए, ला रजुल के लफ्जों पर हमल करते हुए या उसके महल्ले करीब पर हमल करते हुए, और हसन उल वजही पढ़ेंगे ला रजुल के महल्ले बाईद पर हमल करते हुए। तवज्जो है, यहां तक बात समझ में आ गई। आज आपको एक नया फायदा मालूम हुआ कि कभी कभार सिफत भी मबनी हो जाती है, कभी कभार सिफत भी मबनी हो जाती है। आज तक तो आपने हमेशा यही पढ़ा था कि सिफत जो है मतबू के ताबिया होती है एराब के अंदर, मबनी होने में उसके ताबिया नहीं होती, लेकिन आज आपने पढ़ा कि सिफत भी कभी कभार मबनी होती है भाई, लेकिन उसमें चार शराइत होनी चाहिए। एक तो वो सिफत किसकी हो, लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी हो, पहली शर्त, वो सिफत किसकी होनी चाहिए, लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी हो, और नीज दूसरी शर्त, वो सिफत पहली सिफत होनी चाहिए, दूसरी या तीसरी नहीं, नीज वो सिफत मुफरद होनी चाहिए, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं होनी चाहिए, और चौथी शर्त यह है कि वो सिफत लाए नफी जींस के उस इसम के साथ जो मबनी है मिली हुई हो, दरमियान में फसल न हो गई। बात समझ में आ गई? तो कितनी शर्तें हैं सिफत के मबनी होने की, चार, कि वो सिफत किसकी हो, लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी हो, दूसरी शर्त क्या कि वो सिफत पहली होनी चाहिए, दूसरी या तीसरी नहीं, तीसरी शर्त क्या कि वो सिफत मुफरद होनी चाहिए, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं होनी चाहिए, और चौथी शर्त यह है कि वो सिफत अपने मौसूफ के साथ मिली हुई हो, दरमियान में फसल न हो गई। यह तो था मबनी की सिफत में, मबनी की सिफत में एक सूरत रह गई भाई, अगर लाए नफी जींस का इसम मुअरब हो, क्या हो, मुअरब हो, लाए नफी जींस का इसम मंसूब होता है जब तीन शर्तें पूरी हों, ला गुलाम रजुलिन फिदार, ला गुलाम रजुलिन, देखो अब ये इसमें तीनों शर्तें पूरी हैं, गुलाम रजुलिन लाए नफी जींस का इसम है, ये उसके साथ मिला भी हुआ है और नकिरा भी है और नीज मुजाफ भी है, तो जब तीनों शर्तें पूरी हो तो लाए नफी जींस का इसम मंसूब होता है, आप पढ़ चुके हैं, तो ये ला गुलाम रजुलिन मंसूब है। अभी पहले किसकी सिफात जिक्र हुई थी, वो जो लाए नफी जींस का इसम मबनी होता है, अब ला गुलाम रजुलिन ये तो लाए नफी जींस का इसम है और मुअरब है, मंसूब है, अगर इसकी सिफत आए तो उस पर क्या पढ़ेंगे, तो उसमें याद रखिए बाज नहवी फरमाते हैं कि इसकी सिफत के अंदर भी दोनों वजहें जायज हैं, ला गुलाम रजुलिन जरीफन और जरीफन दोनों तरह जायज है, लेकिन साहिब काफिया और बाज नहवी हजरात का मजहब यह है कि यहां पर ला गुलाम रजुलिन ये गुलाम रजुलिन मंसूब है तो सिफत पर भी नसब ही पढ़ना है, यहां महल पर हमल करते हुए रफा नहीं पढ़ सकते जी। किसका मजहब है ये साहिब काफिया और बाज नहवी हजरात का मजहब है। तो देखो ये जो पहली सतर में मिसाल आ रही है, जहां आज का सबक शुरू हुआ है, जहां से आज का सबक शुरू हुआ उसकी पहली सतर में है, ला गुलाम रजुलिन जरीफन, ला गुलाम रजुलिन जरीफन, ये गुलाम रजुलिन ये ला का इसम है और मंसूब है, तो इसकी जो सिफत जरीफन आ रही है, बाज नहवी फरमाते हैं यहां पर भी दोनों पढ़ सकते हैं, जरीफन भी और जरीफन भी, जरीफन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मौसूफ लफ्जन मंसूब है, तो ये भी क्या सिफत भी क्या होगी, मंसूब होगी, और जरीफुन क्यों पढ़ेंगे, इस गुलाम रजुलिन के महल पर हमल करते हुए, क्योंकि महल के एतबार से मुबतदा है। लेकिन साहिब काफिया और बाज दीगर उलमाए नह का मजहब यह है कि नहीं, ये ला का इसम जो मंसूब है, जब ये खुद मंसूब है तो सिफत भी मंसूब ही आएगी, ला गुलाम रजुलिन जरीफन ही पढ़ सकते हैं, यहां जरीफन नहीं पढ़ सकते, और अल्लामा जामी ने भी इन्हीं की ताइद की है, अल्लामा जामी ने भी इन्हीं की ताइद की है, किस चीज में, लाए नफी जींस का वही समझो मंसूब होता है तो उसकी सिफत भी क्या होगी, मंसूब होगी, साहिब काफिया का यह मजहब है और अल्लामा जामी ने भी इसी की ताइद की है, अगरचे यहां पर जिक्र नहीं है, लेकिन देखिए वो जहां जहां लाए नफी जींस की खबर की बात आई थी भाई, निकालें जरा ये किताब में भाई, मुब्तदा के बाद, मुब्तदा की बहस जहां मरफूआत शुरू हुए थे, हां मरफूआत शुरू से निकाल लिया, इसमें थोड़ा आगे जाएंगे ना, इसी मरफूआत में लाए नफी जींस की खबर का जिक्र आएगा, लाए नफी जींस की खबर, खबर उल्लती लि नफील जींसी, मतन आ रहा है काफी आगे है, खबर उल्लती लि नफील जींसी, मुब्तदा खबर के बाद यह बहस आएगी, मिल गया, खबर उल्लती ली नफील जिनसी जी, इसी के अंदर दो तीन सत्रों के बाद आगे आ रहा है, मतन है, नहव ला गुलाम रजुलिन जरीफुन, मिल गई मिसाल, ला गुलाम रजुलिन जरीफुन ये मिसाल मिल गई, इसी के अंदर दूसरी सतर में है, लि अन्न गुलाम रजुलिन मुअरबुन मंसूबुन, इसलिए क्योंकि गुलाम रजुल क्या है, ये ला का जो इसम है मुअरब है और मनसूब है, ला यजूज इरतिफा सिफती ही अला मा हुआ जाहिर, इसकी सिफत का मरफू होना जायज नहीं बिनाबर जाहिर के, इसकी सिफत मनसूब ही होनी चाहिए। जाहिर के एतबार से यह है, वरना अगरचे यहां रफा का भी इहतमाल है कि आप महल पर हमल कर लें, लेकिन जाहिर यही है कि जो मुअरब होता है उसकी सिफत उसके एराब के ताबे होती है, उसके महल के ताबे नहीं होती। तो जाहिर यही है कि ये लागुलाम रजुलिन मुअरब है और मनसूब है, तो इसकी सिफत भी मनसूब होनी चाहिए, उसमें रफा जायज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई जी। अब आइए आज के सबक पर जी। अब मतन मतन देखिए भाई, कहते हैं वनातुल मबनी, ये और लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी जो नात है यानी सिफत है। याद रखो एक लफ्ज है नात, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, एक लफ्ज है नात, एक है सिफत, एक है वस्फ। तो नात कह लें या सिफत कह लें या वस्फ कह लें, तीनों का एक ही माना है। अलबत्ता कूफा के जो नहवी हैं वो नात का लफ्ज बोलते हैं, सिफत को वो क्या कहते हैं नातुन, और मौसूफ को कहते हैं मनऊत। भाई नात और मनऊत। और जबकि बसरा के जो नहवी हैं वो सिफत का लफ्ज भी बोलते हैं और वसफ का लफ्ज भी बोलते हैं। तो ये सिफत और वसफ का लफ्ज बोलते हैं और मौसूफ का लफ्ज बोलते हैं, तो बात एक ही है, सिफत कह लें या नात कह लें। तो कहते हैं वनातुल मबनी, ये और लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी जो सिफत है। भाई नातु है मुजाफ, अल मबनी है मुजाफुन इलै, और नातु इस पर रफा पड़ेंगे क्योंकि यह है मुबतदा, और अल मबनी ये पर जर पड़ेंगे क्योंकि यह है मुजाफुन इलै। और आगे मतन में है अल अव्वलु, याद रखो इस पर रफा पड़ना है क्योंकि यह नात की सिफत है, यह अल मबनी की सिफत नहीं। अल मबनी की सिफत हो तो तर्जमा होगा नातुल मबनी यिल अव्वली, पहले मबनी की सिफत, पहले मबनी की सिफत, लेकिन यहां यह मकसूद नहीं है, बल्कि यह अल अव्वल किसकी सिफत है नात की, और उस पर रफा है तो सिफत अल अव्वल पर भी क्या पढ़ेंगे रफा पढ़ेंगे। तो तर्जमा होगा मबनी की वो सिफत अल अव्वल जो पहली हो, पहले मबनी की बात नहीं हो रही बल्कि मबनी की पहली सिफत की बात हो रही है। तो कहते हैं वनातुल मबनी यिल अव्वलु, तो लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी जो पहली सिफत है। मुफरदन यली ही मबनी, जी ये मुफरदन और यली ही ये हाल है, आगे आ रहा है मबनी यूं व मौरबुन, मबनी यून व मौरबुन, तवज्जो है। फिर देखिए मतन, वनातुल मबनी यिल अव्वलु, और लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी जो पहली सिफत है, आगे आ रहा है मबनी यू व मौरबुन। मतन मतन देखना सिर्फ, मबनी यू व मौरबुन ये सिफत क्या होती है, मबनी भी होती है व मौरबुन और मौरब भी होती है, लेकिन मबनी कब होगी, तीन शर्तें थी, क्या पहली सिफत हो और मुफरद हो और साथ मिली हुई हो, तो इसी मबनी से हाल आया पीछे मुफरदन भी और यली ही भी, इसी मबनी से क्या आया हाल आया मुफरदन भी और यली ही भी। मबनी उन कौन सा सीगा है, इसमें मफूल है मरमी उन के वजन पर, और इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए नाइबुल फाइल, तो इसके अंदर हुआ जमीर मबनी उन के अंदर हुआ जमीर नाइबुल फाइल है, और वही जुलहाल भी है, वही जुलहाल भी है, तो मबनी होगी। ये किसकी बात हो रही है, वो सिफत मबनी यूं व मौरबुन, वो सिफत कभी क्या होगी मबनी होगी और कभी वो सिफत मौरब होगी, तो मबनीयून के अंदर हुआ जमीर नात को राजे है, किसको नात को, तो वो नात कभी मबनी होगी और कभी मौरब, तो ये हुआ जमीर जो मबनी के अंदर है ये बनाएंगे जुलहाल, और ये जो माकबल में आया ना मुफरदन और यली ही, इन दोनों को हाल बनाएंगे, वो नात मबनी होगी वो सिफत मबनी होगी इस हाल में कि वो सिफत क्या हो मुफरद हो मुजाफे मुशाबे मुजाफ ना हो, और इस हाल में कि यली ही कि वो सिफत उस मबनी के साथ जुड़ी हुई हो, यली ही यली के अंदर हुआ जमीर है, यली के अंदर हुआ जमीर वो जुलहाल को राजे, क्योंकि जुलहाल से भी तो रबत चाहिए, जैसे मुफरदन है, मुफरदन हाल है ना, तवज्जो भी है कि नहीं, ये मबनीयुन व मोरबुन आगे खबर आ रही है, तो इसी मबनी के अंदर हुआ जमीर जुलहाल है और ये मुफरदन उस हुआ जमीर से हाले अव्वल है और यली ही उससे हाले सानी है और हाल को किससे जोड़ते हैं, जुलहाल से। तो लिहाजा मुफरदन कौन सा सीगा है, इसमें मफूल है मुफरद, अफराद युफरीदु इफरादन फहुआ मुफरीदुन व उफरीद युफरदु इफरादन फजा का मुफरदुन, तो इसमें मफूल है। तो इसके अंदर हुआ जमीर वो किसको राजे है, जुलहाल को, वो जुलहाल मुफरद होगा। और यली ही इसके अंदर भी हुआ जमीर है वो भी जुलहाल को राजे है कि वो सिफत जो है मिली हुई हो। और ये जो आखिर में यली ही के साथ ये हा जमीर जमीर मनसूब है ये मबनी को राजे है। कौन सा मबनी, वो जो पीछे आया था वन्ना अतुल मबनी, ये लाइन ऑफ जिंस का वो इसम जो मबनी हो, यली ही ये सिफत उसके साथ जुड़ी हुई हो, ये सिफत उसके साथ जुड़ी हुई हो। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि ये मुफरदन और यली ही, ये पहले तो ये बताइए ये मुफरदन और यली ही ये हाल है किस से, मबनीयुन के अंदर जो हुआ जमीर है नायबुल फाइल वो जुलहाल है। अब मुझे बताइए ये मुफरदन और यली ही इनमें आमिल क्या है, ये नसब किसने दिया ये मुफरदन को और इसी तरह यली ही, ये भी महलन मंसूब है, ये जो हाल हैं इनको नसब किसने दिया। कई दफा ये बात जिक्र हो चुकी, भाई मैंने आपको बतलाया था कि जो आमिल होता है जुलहाल में वही आमिल होता है हाल में भी। तो जुलहाल क्या है, मबनीयुन के अंदर हुआ जमीर और वो नायबुल फाइल है, उसको रफा किसने दिया, इसी मबनीयुन ने। तवज्जो है, तो उस जुलहाल के अंदर ये मबनी लफ्ज आमिल है तो मुफरदन और यलीही के अंदर भी यही मबनी आमिल है। बात समझ में आ गई, जाब्ता क्या है, हाल और जुलहाल दोनों का आमिल एक होना जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि ये मबनीयुन से हाल आ गए दो, मुफरदन भी और यलीही भी, तो इनको जुलहाल पर क्यों मुकदम किया, जुलहाल तो मबनीयुन के अंदर हुआ जमीर है लेकिन दोनों हाल मुकदम कर दिए, मुफरदन भी और यली ही भी। वजह यह क्योंकि बात चल रही है मबनी की सिफत की, ताकि तीनों कैदें इकट्ठी हो जाएं। वो नात कैसी हो, अल अव्वलू पहली सिफत होनी चाहिए, और मुफरदन वो नात कैसी हो, मुफरद हो, और वो यली ही वो नात कैसी हो, मौसूफ के साथ मिली हुई हो, ताकि तीनों कैदें इकट्ठी हो जाएं। भाई अब फिर तर्जमा देखिए, व नातुल मबनी यिल अव्वलु, और लाइन अफी जिंस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी नात यानी उसकी सिफत जो है अल अव्वलु, उसकी जो पहली सिफत है मबनी युन, वो मबनी होती है इस हाल में कि वो सिफत क्या हो, मुफरद हो, और इस हाल में कि वो सिफत उस मौसूफ के साथ मिली हुई हो, जुड़ी हुई हो। व मोरबुन, और नीस वो सिफत कभी क्या होगी, मोरब होगी, रफ़ाउं व नस्बन, मरफू होते हुए और मनसूब होते हुए, यानी उस पर रफा भी पढ़ सकते हैं, किस पर हमल करते हुए, लाइन ऑफ जिंस के वो इसम जो मबनी है उसकी सिफत मबनी भी हो सकती है और मोरब भी, मोरब हो तो फिर रफा भी आ सकता है और नसब भी। रफा क्यों आएगा, उसके महल्ले बाईद पर हमल करते हुए क्योंकि वो मुबतदा है महल के एतबार से, और नसब क्यों आएगा, उसके लफ्जों पर हमल करते हुए क्योंकि ये फतहा भी किसकी तरह है, नसब जैसा ही है, या उसके महल्ले करीब पर हमल करते हुए क्योंकि महल्ले करीब क्या है, लाइन ऑफ जिंस की वजह से ये इसाम मनसूबुल महल है तो मबनी लेकिन महल के एतबार से मनसूब है। तो ये माना है वह मोरबुन रफ़ाउं व नस्बन, और वो सिफत जो है मोरब होगी इस हाल में कि वो मरफू होगी और मनसूब होगी। नहव मिसाल के तौर पर ला रजुला जरीफा व जरीफुन व जरीफन, तीनों तरह पढ़ सकते हैं। ला रजुला जरीफा, देखो ये मबनी अल अल्फता है सिफत भाई, और जरीफुन ये मरफू है, और जरीफन ये मनसूब है। आगे देखिए, व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, यानी सिफत ऐसी ना हो, उसमें ये तीनों शर्तें पूरी ना हो, फल एराबू, तो फिर उसका हुक्म एराब ही है, यानी उस पर एराब ही पढ़ेंगे। और फिर एराब भी दोनों पढ़ सकते हैं, रफा भी पढ़ सकते हैं और नसब भी। रफा पढ़ेंगे किसकी वजह से? महल्ले बाईद पर हमल करते हुए। और नसब क्यों पढ़ेंगे? लफ्जों पर हमल करते हुए या महल्ले करीब पर हमल करते हुए। बात समझ में आ गई। अब इस सारे को देखिए शरा के साथ। भाई कहते हैं वनातुस मिलल मबनी, ये भाई मतन में था वनातुल मबनी, ये मबनी की सिफत। दरमियान में साहिब जामी ने क्या निकाला? इस्मुला, बतलाना ये चाहते हैं, बतलाना ये चाहते हैं कि अल मबनी सिफत है और इसका मौसूफ महजूफ है। मबनी कौन है? वो ला का इसम जो है उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं वनातुस मिलल मबनी, ये और सिफत उस ला के इसम की अल मबनी जो मबनी होता है। ला ना तुस्मी हल मोरबी, वो ला का इसम जो मोरब होता है उसकी सिफत नहीं, वो यहां मुराद नहीं है। सिर्फ उस इसमें ला की सिफत की बात हो रही है जो मबनी होता है। इबारत समझ में आगे। फिर देखो कहते हैं वना तुस्मी लल मबनी, ये ला ना तुस्मी हल मोरबी, और ला नफी जींस का वो इसम जो मबनी होता है उसकी सिफत, ना के ला नफी जींस का वो इसम जो मोरब होता है उसकी सिफत नहीं। एहतराज उन अन नहवी, ये एहतराज है अन नहवी इस जैसी मिसालों से। ला गुलाम रजुलिन जरीफन, ला गुलाम रजुलिन जरीफन, ये देखो ला गुलाम रजुलिन, ये गुलाम रजुलिन ला नफी जींस का इसम है और ये मबनी है या मोरब है? ये तो मोरब है, मनसूब है। और मतन में इन्होंने क्या कहा? लाए नफी जींस का वो इसम जो मबनी हो, तो ये मोरब को निकालने के लिए वो मबनी की कैद लगाई। बात समझ में आ गई। तो ये माना है एहतराज उन अन नहवी ला गुलाम रजुलिन जरीफन, तो ये ला गुलाम रजुलिन जरीफन जैसी मिसालों से एहतराज के लिए है ये कैद। अल अव्वलु बिर रफ़ी, अल अव्वल को किसके साथ पढ़ना है? रफा के साथ। सिफतुन लिन नाती, ये सिफत है नात की, यानी पहली सिफत मुराद है। और नात मरफू था तो अल अव्वलु पर भी क्या पढ़ेंगे? रफा। इसीलिए कहा अल अव्वलु बिर रफ़ी, अव्वल का लफ्ज जो है रफा के साथ है। सिफतुन लिन नाती, ये सिफत है नात की, तो यानी पहली सिफत मुराद है। ऐ लस्सानी, न के दूसरी, वमा बादहु, और ना उसके बाद वाली, ना तो दूसरी सिफत है और ना उसके मां बाद वाली, यानी तीसरी और चौथी भी मुराद नहीं। सिर्फ कौन सी सिफत मुराद है? पहली सिफत। कहते हैं एहतराज उन अन मिसली, ये कैद जो बढ़ा दी अव्वल वाली, इसके ये एहतराज है इस जैसी मिसालों से। ला रजुला जरीफा करीमुन फिदारी, ये जो करीमुन आया ये पहली सिफत नहीं है। और इन्होंने तो कैद क्या बढ़ाई थी कि पहली सिफत होनी चाहिए, तो ये करीमुन जैसी सिफतों से एहतराज है। मुफरदन हाल मिन जमीर मबनीन, ये मुफरदन ये हाल है मबनी की जमीर से। कौन सा मबनी? एक तो शुरू में आया था वनातुल मबनी, ये वाला मबनी नहीं मुराद, बल्कि आगे जो खबर मबनी आ रही है उससे ये क्या है? हाल है, उसके अंदर जो जमीर है। तो कहते हैं मुफरदन हाल मिन जमीर मबनीन, के मुफरद जो है ये हाल है मबनी की जमीर से। वल आमिल फीही मबनीन, और इस मुफरदन के अंदर आमिल क्या है? वही मबनी है, क्योंकि हाल और जुल हाल का आमिल एक ही होता है। तो कहते हैं वल आमिल फीही मबनीन, और उसके अंदर आमिल क्या है? मबनी है। एहतराज उन अन मिसली ला रजुला हसन अल वजही, कहते हैं ये एहतराज है इस जैसी मिसालों से। ला रजुला हसन अल वजही, अब ये ला रजुला तो मबनी है, लेकिन इसकी सिफत जो है वो पहली सिफत तो है लेकिन मुफरद नहीं है बल्कि मुजाफ है। तो मुफरदन की कैद के जरिए इस किस्म की हसन उल वजही जैसी सिफात से एहतराज है। तो इस पर आप हसन अल वजही भी पढ़ सकते हैं और हसन उल वजही भी, लेकिन इस पर मबनी नहीं आप पढ़ सकते। भाई ये आगे देखिए, यली ही इस हाल में कि वो सिफत मिली हुई हो। यली ही हा जमीर, वो पीछे जो मबनी आया था उसको राजे है, वो जो मौसूफ है कि वो सिफत उस मौसूफ मबनी के साथ मिली हुई हो। कहते हैं हाल उन बाद हाल इन, ये एक हाल के बाद दूसरा हाल है, तो यली ही को भी क्या बना दें? हाल। और सिफत मुफरदन, या ये मुफरदन की सिफत है, ये यलीही को हाल ना बनाओ, दूसरी तरकीब जिक्र कर रहे हैं, मुफरदन को बनाओ मौसूफ और यलीही है उसकी सिफत, और मौसूफ सिफत मिलकर हाल बना दो मबनी उनसे, यानी एक ही हाल बना दो, एक ही हाल, तो माना फिर भी उसी तरह रहेगा कि वो सिफत जो पहली हो मबनी उन मबनी होगी इस हाल में कि वो सिफत ऐसा मुफरद हो यलीही जो उस मबनी के साथ मिली हुई हो। तर्जमा समझ में आ रहा है भाई, मौसूफ से पहले क्या लाते हैं, ऐसा या ऐसी, तो मुफरदन मौसूफ है और यली ही सिफत है, तो मौसूफ से पहले ऐसा का लफ्ज ले आएंगे। देखो वो सिफत मबनी यून क्या होगी, वो पहली सिफत मबनी होगी मुफरदन यली ही इस हाल में कि वो ऐसी मुफरद सिफत हो जो उस मबनी के साथ मिली हुई हो। तो कहते हैं ये हाल उन बाद हाल इन, या तो ये एक हाल के बाद दूसरा हाल है, और सिफत मुफरदन, या ये सिफत है मुफरदन की, एहतराज उन अनिल मफसूली, ये जो यलीही की कैद लगाई ये एहतराज है उस सिफत से जो मफसूल हो, यानी दरमियान में क्या आ रहा हो फसल, नहु ला गुलाम फीहा जरीफुन। अब इसके अंदर देखो जरीफुन ये ला गुलामा की सिफत है लेकिन दरमियान में फसल आ रहा है, तो इन्होंने क्या कहा फसल नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वहाद अल कैद युगनी अनिल अव्वली, वहाद अल कैद, और ये वाली जो कैद है ये जो यली ही है, युगनी ये बेनियाज कर देती है अनिल अव्वली ऐ अनिल कैदिल अव्वली, ये बेनियाज कर देती है पहली कैद से। तीन कैदें बढ़ाई मबनी की सिफत, पहली कैद क्या अव्वल, पहले अव्वल होनी चाहिए, दूसरी कैद क्या बढ़ाई मुफरदन, और तीसरी कैद क्या बढ़ाई यलीही। कहते हैं ये जो यलीही की कैद बढ़ा दी तो अब अल अव्वलु कैद की जरूरत नहीं, अल अव्वल का क्या माना था पहली सिफत, लेकिन उसमें फसल हो या ना हो दोनों सूरतें हो सकती हैं, जैसे यहां अभी आया ला गुलाम फीहा जरीफुन, ये जरीफुन तवज्जो है इबारत पे नजर रखो, ला गुलाम फीहा जरीफुन, अभी जो गुजरा दो लफज पहले इसमें देखो ये जरीफुन गुलाम की पहली सिफत ही है लेकिन दरमियान में क्या है फसल है, तो पहली सिफत हो उसमें फसल हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, लेकिन जब यली ही कह दिया तो इससे पता चल गया कि फसल नहीं होना चाहिए साथ मिली हुई हो, और जब साथ मिली हुई होगी तो पहली ही होगी सिफत या दूसरी होगी, वो तो पहली ही हो सकती है दूसरी हो ही नहीं सकती भाई, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा यलीही की कैद ये पहली कैद जो अल अव्वलु आई उससे बेनियाज कर देने वाली है, उसकी फिर हाजत नहीं रहती, बात समझ में आ गई। अब यहां इबारत देखो जरा साहिब जामी की, कहते हैं वहाज अल कैदू, और ये वाली जो कैद है ये जो यलीही वाली है, युगनी अनिल अव्वली आई अनिल कैदिल अव्वली, ये बेनियाज कर देती है पहली कैद से, किसे, तो यहां अल कैद मौसूफ निकाल लो और अल अव्वली उसकी सिफत बना लो। लेकिन एक और तरह भी आप इबारत पढ़ सकते हैं कि आप यहां अल कैद मौसूफ ना निकालें बल्कि अल अव्वल से अल अव्वल का लफ्ज मुराद ले लें जी। क्या मुराद ले लें, वो ऊपर जो अल अव्वल का लफ्ज आया था पहली कैद से भी वही मुराद, तो यहां जो अनिल अव्वल आया इससे वही लफ्ज मुराद ले लो, और उस पर क्या था रफा, तो यहां पर भी रफा पढ़ो एराबे हिकाई पढ़ लो, एराबे हिकाई तो यूं पढ़ लो वहाद अल कैद, और ये जो तीसरी कैद है युगनी अनिल अव्वलू, ये उस अव्वल के लफ्ज से क्या कर देती है बेनियाज कर देती है, वो जो अव्वल का लफ्ज आया था पहले उससे ये क्या कर देती है, तो दोनों तरह तर्जमा बेहतरीन हो जाता है, बात समझ में आई कि ये वाली कैद यूं को पहली कैद से बेनियाज कर देती है, यूं भी आप कह सकते हैं, या ये वाली कैद अव्वल का लफ्ज जो आया उस अव्वल के लफ्ज से बेनियाज कर देती है। तो कहते हैं वहाद अल कैद युगनी अनिल अव्वली, तो ये वाली कैद जो है बेनियाज कर देती है अनिल कैद अल अव्वली, पहली कैद से यानी अल अव्वल के लफ्ज से, या यूं पढ़ें वहाद अल कैद युगनी अनिल अव्वलु, और ये वाली कैद बेनियाज कर देती है अल अव्वल के लफ्ज से। मबनीयुन अलल फतही, तो ये जो सिफत है जिसमें ये तीनों शर्तें पूरी होंगी, मबनीयुन अलल फतही, ये क्या होगी? मबनी अलल फता होगी। भाई क्यों मबनी अलल फता क्यों होगी? कहते हैं हमलन अलल मनऊती, मौसूफ पर हमल करते हुए। मौसूफ ला रजुला, वो भी मबनी अलल फता है, तो सिफत भी क्या होगी? सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है, तो उसके लफ्जों पर हमल करते हुए सिफत भी मबनी अलल फता। तो कहते हैं मबनी युन अलल फती, ये सिफत जो है जिसमें ये तीनों शर्तें पूरी होंगी, मबनी अलल फता होगी, हमल अलल मनऊती, मौसूफ पर महमूल करते हुए, लि मकान इत्तेहादी बैनहुमा वल इत्तिसाली। लि मकान, ये मकान मस्तर है याद रखो, बमाने वजूद के, अली वजूद इल इत्तेहादी बैनहुमा वल इत्तिसाली, इसलिए क्योंकि सिफत और मौसूफ के दरमियान इत्तेहाद भी होता है और इत्तिसाल भी होता है। मौसूफ और सिफत में इत्तेहाद भी होता है और इत्तेसा, इत्तेहाद होता है यानी दोनों का मिसदाक एक ही चीज होती है। मसलन मैंने कहा जानी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास एक आलिम आदमी आया, तो रजुलुन मौसूफ और आलिमुन सिफत। अब मुझे बताइए रजुल और आलिम कोई अलग अलग हैं या जो रजुल है वही आलिम है? जो रजुल है वही, मेरे पास आलिम आदमी आया, मालूम हुआ रजुल भी वही जात है और आलिम भी वही जात है। तो देखा दोनों का मिसदाक एक होता है, इस एतबार से दोनों में इत्तेहाद है। ये यूं कहो दोनों एक ही चीज हैं, या यूं कहो माना के एतबार से दोनों में इत्तेहाद होता है, यानी दोनों शय वाहिद ही हैं। भाई वही जात रजुल भी है और वही जात आलिम भी है, तो माना के एतबार से दोनों में क्या है? इत्तेहाद। यूं कहो मिसदाक के अंदर दोनों में इत्तेहाद है, जिस पर रजुल सादिक आ रहा है उसी पर आलिम भी सादिक आ रहा है, और नीस दोनों के दरमियान लफ्जों के अंदर भी इत्तेसाल है, माना के अंदर भी इत्तेहाद और लफ्जों में भी इत्तेसाल। मौसूफ के फौरन बाद क्या लाई जाती है? सिफत। दोनों को इकट्ठा रखते हैं, दोनों में इन्फिसाल नहीं करते, इल्ला नादिरन, बहुत कम ही होता है कि मौसूफ सिफत में इन्फिसाल आ जाए, वरना तो दोनों में क्या होता है? इत्तेसाल। तो लफ्जों के एतबार से इत्तेसाल होता है मौसूफ सिफत में, और माना के एतबार से दोनों में इत्तेहाद होता है। तवज्जो है? तो गोया तवज्जो से सुनो, वो जो मिसाल थी ला रजुला जरीफा, ला रजुला जरीफा, तो देखो ये जरीफ और रजुल इनमें माना के एतबार से भी इत्तेहाद है और लफ्जों के अंदर भी इत्तेसाल है, तो गोया यूं समझो ये ला बराहे रास्त जरीफ पर ही दाखिल हो रहा है, और दरमियान में जो रजुल का फसल भी है ये भी ला फसल की तरह है, क्योंकि दोनों में इत्तेहाद भी है और इत्तेसाल भी है, तो गोया ये ला बराहे रास्त उस सिफत पर ही दाखिल हो रहा है, और वो सिफत वो ला के साथ मिली भी हुई है, नकेरा भी है और मुजाफ या मुशाबे मुजाफ भी नहीं, तो इस सूरत में वो जैसे ला का इसम मबनी होता है, ये सिफत भी क्या हो गई? मबनी हो गई, क्योंकि इसमें भी वो शर्तें पूरी हैं। बात समझ में आई? ये सिफत क्यों मबनी है? क्योंकि यूं समझो ला इस पर बराह रास्त दाखिल हो रहा है। भाई बराह रास्त कहां से दाखिल हो रहा है? दरमियान में रजुल है। कहते हैं नहीं भाई, अगरचे रजुल है लेकिन ये भी ला फसल की तरह है, क्योंकि सिफत और मौसूफ ये माना के एतबार से शय वाहिद होते हैं और नी लफ्जों में भी इत्तेसाल है, तो लिहाजा ये फसल भी ला फसल की तरह हुआ, गोया ला बराह रास्त जरीफ पर दाखिल हो रहा है, और जब रजुल पर बराह रास्त दाखिल हुआ था तो वो मबनी अलल फता था, तो जरीफ पर जब बराह रास्त गोया दाखिल हो रहा है तो वो भी क्या होगी? मबनी अलल फता होगी। ये माना है कि लि मकान इल इत्तेहादी बैनहुमा वल इत्तिसाली, बवजह इत्तेहाद के पाए जाने के इन दोनों के दरमियान और इत्तिसाल के पाए जाने के, यानी इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिसाल पाया जाता है मौसूफ और सिफत में, वह तवज्जो ही नफ इलैही ऐ इलन नाति हकीकतन, ये तवज्जो का आतफ कर दें लि मकान पर, लि मकान इल इत्तेहादी वली तवज्जो ही नफी, और नीज इसलिए क्योंकि नफी मुतवज्जे हो रही है इलैही सिफत की तरफ, इलैही ऐ इलन नाति हकीकतन, सिफत की तरफ हकीकतन मुतवज्जे हो रही है। भाई देखिए याद रखो ये जो सिफत है ना ये मौसूफ के लिए कैद हुआ करती है, ये सिफत क्या होती है? मौसूफ के लिए कैद हुआ करती है। मसलन आप कहते हैं जा अनी रजुलुन आलिमुन, रजुलुन मौसूफ और आलिमुन सिफत, और ये सिफत आलिमुन के लिए कैद है, इससे पता चला आपके पास जो आदमी आया है वो रजुले आलिम है, یعنی غیر عالمہ نہیں ہے، یہ قید بن گئی یا نہیں؟ تو یہ صفت قید ہوا کرتی ہے موصوف کے لیے، اور موصوف ہو گیا مقید، موصوف کیا ہوا؟ مقید. اور یاد رکھو مقید پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مقید کی طرف نہیں. پھر دوہرائیے، صفت کیا ہوتی ہے؟ قید، اور موصوف کیا بن گیا؟ مقید. اور اس مقید پر جب نفی داخل ہوگی، یہ مقید جس کے ساتھ قید ہے، اس پر جب نفی داخل ہوگی تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوگی، یعنی قید کی نفی ہوگی، مقید کی نفی نہیں ہوگی. دیکھو مثال سے اور بات سمجھ میں آئے گی. آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے لا آکلو خبزن باریدن، لا آکلو خبزن باریدن، خبزن موصوف اور باریدن اس کی صفت، خبز کہتے ہیں روٹی کو، لا آکلو خبزن باریدن، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا. اب اس کا کیا معنی؟ کیا اس نے مطلقاً روٹی کھانے سے انکار کیا ہے یا ٹھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے؟ ٹھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے. تو دیکھو لا آکلو خبزن باریدن، یہ خبزن مقید ہے اور اس پر لا داخل ہوا، لا آکلو، تو یہ مقید یعنی روٹی کی نفی نہیں ہوئی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا، بلکہ باریدن ٹھنڈی کی نفی ہوئی ہے کہ ٹھنڈی نہیں کھاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی. یا دوسری مثال لے لو، آپ کہتے ہیں لا رجلا ظریفا فی الدار، لا رجلا ظریفا فی الدار، کوئی خوش مزاج آدمی اس گھر میں نہیں ہے. تو لا رجلا ظریفا فی الدار، رجل ہے موصوف اور ظریف ہے اس کی صفت، اور صفت کیا ہوتی ہے؟ قید. تو رجل ہوا مقید اور ظریف ہوئی قید، اور اس پر لا آ گیا، لا رجلا ظریفا فی الدار، اس گھر میں کوئی خوش مزاج آدمی نہیں ہے. آپ نے رجل کی نفی کی گھر کے اندر ہونے سے یا خوشتبا کی نفی کی؟ خوشتبا کی نفی کی ہے، ہو سکتا ہے غیر خوشتبا وہاں موجود ہو. بھائی تو معلوم ہوا کہ جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے؟ وہ نفی قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے، صفت کی طرح متوجہ ہوتی ہے، موصوف کی طرح متوجہ نہیں ہوتی. تو یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وتوجہ نفی الیہ، اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو نفی داخل ہوئی ہے یہ متوجہ ہے الیہ ایلا نعتی، اس صفت کی طرف حقیقتن. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یہ چل رہی ہے کہ لا رجلا ظریفا، یہ ظریفا پر مبنی، اس کو مبنی کیوں پڑا؟ تو دو وجہ ذکر کر دیں صاحب جامی نے. ایک تو وجہ یہ کہ یہ جو لا ہے، یہ لا یہ ظریف پر بھی داخل ہو رہا ہے، اور یہ درمیان میں جو رجل کا فصل آ رہا ہے یہ بھی لا فصل کی طرح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی اتحاد اور لفظوں کے اعتبار سے بھی اتحاد، تو گویا یہ رجل کا فصل بھی لا فصل کی طرح ہے. اور نیز دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نفی ہے یہ رجل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ظریف کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، تو گویا یوں سمجھو ظریف پر براہ راست لا داخل ہو رہا ہے. تو جب ظریف پر براہ راست لا داخل ہوا تو اس کے اندر دیکھو ظریف لا کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے، اور ظریف نکرہ بھی ہے، اور تیسری شرط تھی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، اگر ہوتا تو پھر تو منصوب ہوتا ہے، لیکن لائن افی جنس کے حصے میں آپ نے کیا پڑھا کہ وہ مبنی ہوتا ہے کب؟ جب ساتھ بھی ملا ہو، نکرہ بھی ہو، اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. تو ظریف بھی اسی طرح ہو گیا، لا گویا اس پر براہ راست داخل ہوا، یہ لا کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور نکرہ بھی ہے اور مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہے، تو لہذا اس کو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ معنی ہے لمکان الاتحاد بینہما والاتصال، بوجہ اس کے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی موصوف صفت کے درمیان اتحاد ہے معنی کے اعتبار سے، اور اتصال بھی ہے لفظوں کے اعتبار سے، اور نیز وتوجہ نفی الیہ، اور اس لیے کیونکہ یہ نفی متوجہ ہو رہی ہے الیہ ای الن نعتی، اس صفت کی طرف ہی، حقیقتن حقیقتن اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، مجازن ہم نہیں کہہ رہے، حقیقتن نفی اسی کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو قید کی نفی ہوتی ہے. والمبنی فی قولہ ونعت المبنی اشارت. بھئی دیکھیے یہاں ایک ڈیڑھ سطر بعد ایک مثال آ رہی ہے لا ماء ماء باردن، مثال مل گئی ایک ڈیڑھ دو سطروں کے بعد ہے لا ماء ماء باردن. یاد رکھو یہ لا نفی جنس ہے جس کی بحث چل رہی ہے، اور یہ ما اول جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور یہ اس کے اندر تینوں شرطیں پوری ہیں، ये नकेरा भी है, ये ला के साथ मिला भी हुआ है, दरमियान में फसल नहीं है, और नीज ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ भी नहीं है। और इस किस्म का ला का जो इसम होता है वो मबनी अलल फता होता है, तो इसलिए ला मा आ ये क्या है, मबनी अलल फता। और आगे जो दूसरा मा आ रहा है, याद रखो ये इसकी ताकीद है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि एक ही लफ्ज को दोबारा लाया जाए तो वो अव्वल के लिए ताकीद बनता है, तो ये माए सानी क्या है, माए अव्वल के लिए ताकीद है। और ये जो माए सानी है इसके अंदर भी उसी तरह इस पर नसब पढ़ना भी जायज, मा आ ला मा आ मा आ बारिदन, तो ये माए सानी को भी मबनी अल फता पढ़ना जायज। नीज इस पर रफा भी पढ़ सकते हैं, ला मा आ मा उन बारिदन, और नीज इस पर नसब भी पढ़ सकते हैं, ला मा आ मा अन बारिदन। तो ये जो माए सानी जो है, जो ताकीद है अव्वल के लिए, इसमें उस माए अव्वल की तरह इसको मबनी पढ़ना भी जायज और मौरब पढ़ना भी जायज। और मौरब पढ़ेंगे तो रफा भी पढ़ सकते हैं महल्ले बाईद पर हमल करते हुए, और इस पर नसब भी पढ़ सकते हैं इसके मां के लफ्जों पर हमल करते हुए, या इसके महल्ले करीब पर हमल करते हुए, क्योंकि ला का इसम मंसूब होता है। लेकिन इस वक्त यहां हमारी बहस चल रही है जब माए सानी पर भी फतहा पढ़ा जाए, यानी इसको भी मबनी पढ़ा जाए, और यूं पढ़ा जाए ला मा आ मा आ बारिदन। मिसाल बात समझ में आ गई, माना है ला मा आ मा आ बारिदन, कोई पानी ठंडा नहीं है, बारिद का माना ठंडा। अब देखो यहां पर ये जो बारिदन सिफत आ रही है ये माए सानी की सिफत है, ये बारिदन सिफत है माए सानी की, और इस सिफत के अंदर इस पर सिर्फ रफा और नसब जायज है, इसको मबनी अलल फता पढ़ना जायज नहीं। बारिदन भी पढ़ सकते हैं, बारिदुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको बारिदा मबनी अलल फता पढ़ना जायज नहीं। तो इस पर इश्काल होता है, इश्काल ये कि मतन में क्या कहा था ऊपर जहां मतन शुरू हुआ था, वना अतुल मबनी ये, और मबनी की सिफत जो है, और ये ला मा आ मा आ बारिदन, ये माए सानी को भी आपने क्या पढ़ा मबनी, और बारिदन उसकी सिफत है, तो देखो ये मबनी की सिफत है। और फिर उस सिफत के अंदर तीन शर्तें जिक्र की थी कि वो सिफत क्या होनी चाहिए, पहली सिफत हो, ये बारिदन भी माए सानी की पहली सिफत है। दूसरी शर्त यह थी कि वह सिफत मुफरद हो, यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो, यह बारिदन भी मुफरद है, यह भी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है। और तीसरी शर्त यह जिक्र की थी कि वह सिफत मबनी के साथ यानी मौसूफ के साथ मिली हुई हो, दरमियान में फसल ना हो, और यह बारिदन भी अपने मौसूफ माए सानी के साथ मिला हुआ है, दरमियान में फसल नहीं। तो लिहाजा इस पर जो मुसन्निफ ने कहा, मुसन्निफ ने क्या कहा था, इधर देखिए, नातुल मबनी यिल अव्वलो मुफ्रदन यलीही, लाय नफी जिसका वही समझो मबनी हो, उसकी जो पहली सिफत है इस हाल में के मुफरद भी हो और साथ मिली भी हुई हो, ये सारी बातें इस बारिदन पर सादिक आ रही हैं, लिहाजा इसमें भी फतहा जायज होना चाहिए। लेकिन उलमाए नहव क्या फरमाते हैं, इसमें फतहा जायज नहीं। इश्काल समझ में आया कि आपने जितनी शर्तें जिक्र की थी कि मबनी की सिफत हो वो शर्त भी पूरी है यहां, और पहली सिफत हो वो शर्त भी पूरी है, और मुफरद हो ये शर्त भी पूरी है, और साथ मिली हुई हो ये शर्त भी पूरी, लिहाजा इस बारिदन को मबनी अलल फता पढ़ना जायज होना चाहिए, लेकिन इसको तो मबनी अलल फता पढ़ना जायज नहीं। इस पर या सिर्फ आप रफा पढ़ सकते हैं तनवीन के साथ, या नसब पढ़ सकते हैं भाई तनवीन के साथ। सूरत समझ में आ गई, तो मबनी अल अल्फता यानी बगैर तनवीन के इसको पढ़ना सही नहीं। तो साहिब जामी उसका अब जवाब देने लगे हैं कि मतन में जो आया था ना नातुल मबनी, ये मबनी की सिफत, कहते हैं इस मबनी से मुराद वो मबनी है जो असालतन मबनी हो, असल के एतबार से मबनी हो, जो तबान मबनी हो वो मुराद नहीं। और यहां पर भी ला मा आ मा आ बारिदन, मैंने आपको बताया ये माए अव्वल ये है ला का असल में इसम, तो ये असल के एतबार से मबनी है, और माए सानी जो मबनी है वो अव्वल के ताबे होने की वजह से मबनी है, क्योंकि वो अव्वल के लिए ताकीद है। तो मुअक्कद जो पहली यानी जो पहला मा है वो है असालतन मबनी, और जो माए सानी है वो है तबान मबनी। तो तो मतन में क्या आया था, जहां मतन हम जहां से हमने आज सबक शुरू किया, वनातुल मबनी, ये मबनी की सिफत, इस मबनी से वो वाला मबनी मुराद है जो असालतन मबनी हो, जो तबान मबनी हो वो मुराद नहीं। तो लिहाजा ये जो मा अबारिदन, ये मा ए सानी इससे निकल गया, लिहाजा इसकी जो सिफत है वो इसके अंदर जो ऊपर मतन में तारीफ की शर्तें होंगी तो मबनी भी पढ़ सकते और मुअरब भी, वो तारीफ अब इस पर सादिक नहीं आ रही, क्योंकि मबनी से कौन सा मबनी मुराद है जो असालतन या अपनी अपनी असल होने के एतबार से मबनी हो, असालतन यानी असल होना, तो असल होने के एतबार से जो मबनी है, और माय अव्वल जो है वो असल होने के एतबार से मबनी है, माय सानी असल होने के एतबार से मबनी नहीं, वो तो ताबिया है, ताकीद है भाई, ताकीद तो अपने मतबू मौकद के मुताबिक उस पर एराब वगैरह आता है। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वल मबनी यूफी कौली ही, और मबनी का लफ्ज जो आया मातीन के इस कौल में, वना अतुल मबनी, ये इबारत मिल गई, कहते हैं वल मबनी यूफी कौली ही वना अतुल मबनी, ये के मातीन का जो कौल आया था ना ऊपर वना अतुल मबनी, ये इसके अंदर जो मबनी का लफ्ज है इशारतुन, ये इशारा है इला मा युबना अलल फतह बिल असालती, ये इशारा है उस इसम की तरफ जो मबनी अलल फतह होता है बिल असालत, असल होने के एतबार से, ला बि तबईयती, ताबे होने के एतबार से जो मबनी हो वो मुराद नहीं है। फइन्नहुल मज़कूर साबिकन, इसलिए क्योंकि वही मज़कूर है साबिकन मा कबल के अंदर, भाई ला नफी जिंस का इसम कभी मबनी होता है तो उस इसम की बात हुई है पीछे के, ला नफी जिंस का क्या इसम क्या होता है कभी मबनी, और उसकी ताकीद भी मबनी पढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे तो कहीं ताकीद की बात नहीं की, पीछे तो ताकीद की बात नहीं की, वो तो पीछे जिस मबनी की बात हुई है वो वाला मबनी है जो असालतन मबनी होता है, वो जो ताकीद मबनी होती है उसका तो पीछे कहीं जिक्र ही नहीं। तो अल मबनी पर अलिफ लाम महद खारजी का है वो वाला मबनी जो पीछे गुजरा था, और पीछे कौन सा मबनी गुजरा है जो असालतन मबनी है, जो तबान मबनी है यानी ताकीद है, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, ये माना है। तो कहते हैं फईन नहुल मजकूर साबिकन, इसलिए क्योंकि वही जो असालतन मबनी होता है वही माकबल के अंदर मजकूर हुआ है। फला यरीदू, अब वो इश्काल जिक्र करेंगे, इश्काल क्या हुआ था कि आपने हमें क्या कहा कि मबनी की पहली सिफत हो मुफरद हो और साथ मिली हुई हो तो उस पर फतहा पढ़ना जायज है। अब वही इश्काल सारा जिक्र करेंगे कि देखो ये तारीफ तो ला मा आ बारिदन, इस बारिदन पर भी सादिक आ रही है। कहते हैं फला यरीदु, तो ये एतराज वारिद नहीं होता कि अन्नहु इदा कुर्रिर अल मबनीयु, के जब मबनी को मुकर्रर लाया जाए, लामा अमा अबारिदन, इसमें माय सानी को मुकर्रर लाया गया है तो फिर मुकर्रर लाया जाए, व बुनिया अलल फतही, और फिर उसको मबनी किया जाए फतह पर, इसमें भी माय सानी को फतह पर मबनी किया गया है। सुम्मा जी अभी नातीन, फिर उसकी सिफत लाई जाए तो ला यजूज बिना उहू, तो उस सिफत की तो बिना जायज नहीं, उसको तो मबनी अल फता पढ़ना जायज नहीं, जैसे ला मा अमा आ बारिदन, मा अन्नहु यस्तुकु अलैही, बावजूद इसके कि इस पर सादिक आ रही है मुसन्निफ की यह बात कि अन्नहु नातुल मबनी यिल अव्वलु मुफरदन यलीही, यह भी मबनी की सिफत है, पहली सिफत है, मुफरद है, और साथ बावजूद इसके इसके ये सारा कुछ इस पर सादिक आ रहा है फिर भी इसकी बिना जायज नहीं। क्यों? कहते फैन न बारिदन फी हादल मिसाली ना तुन लिताबी लाल मतबोई का मा हुआ जाहिर, इसलिए क्योंकि बारिदन को जो लफ्ज आया इस मिसाल के अंदर वो ताबिया की सिफत है यानी माए सानी की, लाल मतबोई यानी मतबो यानी माए अव्वल की सिफत नहीं है, कमा हुआ जाहिर जैसे कि ये ही जाहिर है। इश्काल समझ में आया, तर्जमा जरा एक दफा फिर देख लीजिए। कहते हैं फला यरीदु अन्नहु इदा कुर्रिर अल मबनी यु व बुनिया अल अल फतही, लिहाजा यह एतराज वारिद नहीं होता कि जब एक मबनी का तकरार किया जाए, व बुनिया अल अल फतही, और उसको मबनी बनाया जाए फतह पर, यह एतराज वारिद नहीं होता कि अन्नहु इदा कुर्रिर अल मबनी यु, के मुकर्रर लाया जाए उस मबनी को यानी जो पहले इसम मबनी था उसको मुकर्रर लाया जाए, व बुनिया अलल फतही, और फिर उसको मबनी अलल फता किया जाए, सुम्मा जी अभी नातीन, फिर उसकी सिफत लाई जाए तो ला यजूज बिना उहू, उसकी बिना तो जायज नहीं। आपने तो हमें क्या कहा था, बिना जायज है, इसमें सारी शर्तें हालांकि पूरी हैं लेकिन इसकी बिना तो जायज नहीं। मिसलु ला मा अमा अबारिदन मा अन्नहु यस्दुकु अलैहि, बावजूद इसके कि इस सिफत पर यह बात सादिक आ रही है। क्या बात सादिक आ रही है, कि अन्नहु नातुल मबनील अव्वलु मुफ्रदन यलीही, कि ये भी मबनी की पहली सिफत है इस हाल में कि मुफ्रद है और इस हाल में कि उसके साथ मिली हुई है। ये सारी चीजें उस पर सादिक आ रही हैं लेकिन इसकी तो बिना जायज नहीं। कहते हैं फइन्न बारिदन फी हादल मिसाल नातुन लिताबिई लालिल मतबूई कमा हुआ जाहिर, इसलिए क्योंकि बारिदन का लफ्ज जो इस मिसाल के अंदर आया नातुन लिताबिई, ये ताबिया की सिफत है यानी माय सानी की सिफत है, लालिल मतबूई ये मतबू यानी माय अव्वल की सिफत नहीं है। तो ये ताबिया की सिफत है और ताबिया वो तो असालतन मबनी नहीं है बल्कि वो तो तबअन मबनी है। कमा हुआ जाहिर, जैसे कि यही जाहिर है कि ये ताबिया की सिफत है मतबू की नहीं। वलव जुइला नातन लिल मतबूई, और अगर इसको मतबू यानी माय अव्वल की सिफत करार दिया जाए फलैसा मिम्मा यलीही, तो फिर ये उन सिफात में से नहीं है जो साथ मिली हुई हो। भाई अगर ये बारिदान को माय अव्वल के लिए सिफत बना दें तो फिर बाकी शर्तें तो पूरी हैं। ये बारिदान मबनी की सिफत है, पहली सिफत है, मुफरद भी है लेकिन साथ नहीं मिली हुई क्योंकि दरमियान में माए सानी आ रहा है, तो लिहाजा इस वजह से भी अगर माए अव्वल के लिए सिफत बनाएं फिर तो एतराज ही नहीं होता। और बज़ाहिर यह है कि माए सानी के लिए सिफत है लेकिन उस सूरत में भी हमने जवाब दे दिया कि मबनी से वो वाला मबनी मुराद है जो असालतन मबनी हो, जो तबान मबनी हो वह मुराद नहीं। तो कहते हैं वला उजुइला नातन लिल मतबूई फलैसा मिम्मा यलीही, और अगर इसको मतबू के लिए यानी माय अव्वल के लिए सिफत बना दिया जाए फलैसा मिम्मा यलीही, तो ये उन सिफात में से नहीं जो उसके साथ मिली हुई हों, यानी यहां शर्तें पूरी नहीं। लितवस्सुति ताबिई बैनहुमा, इसलिए क्योंकि ताबिया जो है यानी माय सानी जो है वो इन दोनों के बीच में आ गया। व मुअरबुन, ये अतफ है पीछे जो मबनी यून आया। वन्ना अतुल, देखो मतन को मतन से जोड़ें, इन्होंने कहा था वन्ना अतुल मबनी यिल अव्वल मुफ्रदन यली ही मबनी यूं व मौरबुन, के लाइनफी जिसका वो इसम जो मबनी हो उसकी जो पहली सिफत है मुफरद होने और साथ मिले हुए होने की हालत में मबनी यून क्या होगी, मबनी होगी। व मौरबुन, और मौरब होगी, और फिर मौरब होने की सूरत में उस पर रफा भी पढ़ सकते हैं और नसब भी। तो कहते हैं वह मौरबुन और मौरब भी होगी। लि अन्नल असल फी तवाबिय, क्योंकि तवाबिय के अंदर असल यह है तबईयतुहा लि मतबूआतिहा फिल इराब दूनल बिनाई, क्योंकि तवाबिय के अंदर असल यह है कि वह ताबिय होते हैं अपने मतबू के इराब के अंदर दूनल बिना इना के बिना में। मसलन आप कहते हैं जा अहादा, यह हाजा क्या है फाइल, और यह हाजा इसमें इशारा है मबनी है, और इसकी आप सिफत लाते हैं अर रजुलु, तो उस पर रफा पड़ेंगे, उस पर क्या पड़ेंगे रफा, क्योंकि हाजा महल के एतबार से यानी महल एराब इसका जो है रफा है, और मबनी का जो ताबे होता है वो उसके महल एराब के ताबे होता है, उसके उसकी बिना के ताबे नहीं। तो हाजा की सिफत अर रजुल लाए, अब ये माना नहीं कि अर रजुल भी मबनी हो गया, नहीं नहीं, मबनी की जो सिफत लाई जाती है वो उसके एराब में उसके ताबिया होती है, उसके बिना में उसके अंदर उसकी ताबिया नहीं होती। या दूसरी मिसाल ले लें जा अहा उलाई, हा उलाई इसमें इशारा है करीब के लिए, हा उलाई ये सब, जा अहा उलाई ये सब आए, जा अनी हा ये सब मेरे पास आए। अब हा उलाई देखो इसमें इशारा है और ये मबनी अल कसर है, इसके आखिर में कसर आ रहा है, जा हा उलाई। अब इसकी सिफत मैं लाता हूं अल किरामु, जा अहा उलाई किरामु, तो देखो हा उलाई ये महल के एतबार से एराब के एतबार से फाइल है मरफू है महलन, तो इसकी सिफत जो लाएंगे अल किरामु उस पर भी रफा पड़ेंगे, वरना अगर बिना के अंदर इसके ताबे होती तो यूं कहना चाहिए था जा अहा उलाई किरामी, लेकिन अल किरामी नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं अलकेराम, तो मबनी की जो सिफत आती है वो उसके एराब के अंदर उसके ताबे होती है, जो महल एराब होता है उसका, बिना के अंदर उसके ताबे नहीं होती। फिर देखिए तर्जमा व मोरबुन, और ये सिफत मौरब भी होगी, लिअन्न अल असल फी तवाबी, क्योंकि तवाबे के अंदर असल ये है कि तबईयतुहा लिमतबूआतिहा, कि ये ताबे होते हैं अपने मतबूआत के, फिल एराबी दून अल बिनाई, एराब के अंदर अपने मतबू के ताबे होते हैं, बिना के अंदर उनके ताबे नहीं होते। रफअन, और ये सिफत मौरब होगी, रफअन अई मरफूअन, आप चाहें तो रफअन को क्या बना दें, हाल बना दें। मौरबुन के अंदर हुआ जमीर किसको राजे, मबनीयू व मौरबुन, ये किसकी बात हो रही है, सिफत की, तो मौरबुन के अंदर हुआ जमीर नाइबुल फाइल है, वो सिफत को राजे, और उसी से रफ अन हाल बना दें, वो सिफत मौरब होगी, रफ अन आई मरफू अन, इस हाल में क्या होगी, मरफू, और व नस्बन व मनसूबन, मरफू भी हो सकती है और मनसूब भी, और आप चाहें तो इसको मफूले मुतलक बना लें, ये रफ अन और नस्बन को, पहले मैंने क्या कहा, रफ अन और नस्बन को हाल बनाए, हाल मनसूब होता है इसलिए ये मनसूब है, लेकिन ये कि मस्तर है और मस्तर का हमल तो जात पर नहीं हो सकता, तो रफअन बमाने मरफूअन इसमें मफूल के ले लें, और नस्बन बमाने मनसूब के ले लें, और आप चाहें तो इसको मफूल मुतलक बना लें, ये मुअरब के लिए, आई मुअरबुन इराब रफइन व इराब नस्बिन। मफूल मुतलक क्या होता है, वो मस्तर जो माकबल फेल के माना में हो, तो इराब मस्तर आया और माकबल में मुअरब सिफत का सिगा आ गया, तो ये मस्तर हुआ माकबल सिफत के सिगे के मुताबिक, तो ये मफूले मुतलक है, और मफूले मुतलक क्या होता है, मनसूब होता है, इसीलिए एराब रफ़ईन, मैंने नसब पढ़ा और इजाफत हो रही है रफा की तरफ, एराब रफ़ईन व एराब नस्बिन, वो मौरब होगा एराब रफा और एराब नसब के साथ। फिर वो जो मफूले मुतलक एराब था उसको हजफ कर दिया और मुजाफिले को उसका कायम मकाम कर दिया, और वो मनसूब था, तो ये मुजाफिले भी अब उसके कायम मकाम होकर क्या बन गया, मनसूब। तो कहते हैं रफअन हमलन अला महल्लिहिल बईदी, वो सिफत मरफू होगी उस मौसूफ के महल्ले बईद पर हमल करते हुए, बात समझ में आ रही। व नस्बन, और वो सिफत इस हाल में एक मनसूब होगी, हमलन अला लफ्जी, उस मबनी के लफ्जों पर हमल करते हुए, और अला महल्लिहिल करीब, या उसके महल्ले करीब पर हमल करते हुए, नहु मिसाल के तौर पर ला रजुला जरीफा, देखो ये जरीफा बिलफ किसके साथ आया, फता के साथ मबनी है, वह जरीफ उन बिर रफ, और जरीफ उन रफा के साथ आया, ये हमल है महल्ले बईद पर, वह जरीफ अन बिन नस्बी, और ये नसब के साथ, तीनों तरह आप पढ़ सकते हैं, लारा जुला जरीफा, लारा जुला जरीफन, और लारा जुला जरीफन। वह इल्ला, मैंने बताया था इल्ला से पहले वह आ जाए तो यह हर्फ इस्तिस्ना नहीं होता, बल्कि ये इन और ला से मुरक्कब होता है, आई व इल्लम यकुन कज़ालिक, अगर ऐसा ना हो, तो कहते हैं व इल्ला, आई व इल्लम यकुन नातु कज़ालिक, और अगर सिफत ऐसी ना हो, फल एराबू आई फहुक्मुहुल एराबू, फहुक्मुहुल, तवज्जो से सुनो, तरकीब बयान कर रहे हैं साहिब जामी, मतन में आया व इल्ला फल एराबू, साहिब जामी ने बतलाया कि फहुक्मुहुल एराबू, बतलाया कि एराब को खबर बनाओ और इसके लिए मुब्तदा महजूफ निकाल लो, फहुक्मुहु अल एराबू, तो इस सिफत का हुक्म क्या है, जो ऐसी ना हो, इनके अलावा कोई भी सिफत हो, फहुक्मुहु, तो उसका हुक्म जो है अल एराबू, एराब ही है, हसर आ गया, मुब्तदा क्या निकाला, फहुक्मुहु, मुब्तदा मुजा मुजाफिले मिलकर मुब्तदा, और अल एराबू खबर भी मारिफा, और मुब्तदा खबर जब दोनों मारिफा हो तो वह हसर का फायदा देते हैं, फहुक्मुहुल एराब, तो इस किस्म की सिफत जिसमें यह शर्तें ना हो तो उसका हुक्म एराब ही है, यानी वहां उसको मबनी नहीं पढ़ सकते, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फल एराबू ऐ फहुक्मुहुल एराबू, तो उसका हुक्म एराब ही है, ला गैरू, इसके अलावा नहीं है। यह ला गैरू क्यों लाए साहिब जामी, बतलाना ये चाहते हैं कि ये हसर का फायदा दे रही है ये तरकीब, फहुक्मुहुल एरा, मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफाओं, किस चीज का फायदा देते हैं, हसर का, और हसर किसे कहते हैं, ایک چیز کے لیے اس بات ہے تو دوسری چیز سے اس کی نفی ہے. مخاطب کا خیال تھا کہ اس صورت میں بھی معرب اور مبنی دونوں ہو سکتا ہے, تو بتلایا نہیں, اگر یہ شرطیں پوری نہیں فحکمہ الاعراب, تو اس صفت کا حکم اعراب ہی ہے, یعنی اس کو مبنی نہیں بنا سکتے. تو کہتے ہیں فحکمہ الاعراب لا غیر, تو اس صفت کا حکم جو ہے وہ اعراب ہی ہے, لا غیر اس کے علاوہ نہیں. رفعن, اور پھر اس پر اعراب پھر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصبی. رفع کیوں آئے گا؟ کہتے ہیں رفعن رفع مرفوع بھی ہو سکتا ہے, حملن علی المحل البعید, اس کے محل بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ وہ مبتدا ہے. ونصبن, اور نصب بھی ہو سکتا ہے, حملن علی اللفظی, اس مبنی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے, اوی المحل القریبی, یا اس کے محل قریب کیونکہ لا کا اسم منصوب المحل ہوتا ہے. وقد مرت امثلته فی بیان فوائد القیود, اور تحقیق ان کی مثالیں گزر چکی ہیں, فی بیان فوائد القیود, فوائد قیود, جہاں ہم نے قیود کے فائدے ذکر کیے تھے کہ المبنی کی قید کیوں لائے, الاول کی قید کیوں لائے, المفرد کی قید کیوں لائے, اور یلیہ کی قید کیوں لائے, وہاں ہم نے سب کی مثالیں بھی ذکر کر دی تھیں. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. اچھا, حاصل کلام پھر سن لیں. لائے نفی جنس کا اسم کبھی مبنی ہوتا ہے اور کبھی معرب. جب معرب ہو, معرب ہو تو پھر اس کی صفت کے اندر تو صاحب کافیہ کے نزدیک نصب ہی پڑیں گے, کیونکہ موصوف منصوب ہے تو صفت پر بھی نصب, جبکہ بعض نحوی فرماتے ہیں اس کے اندر بھی رفع اور نصب دونوں جائز ہیں. نصب پڑیں گے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے, اور رفع پڑیں گے محل پر حمل کرتے ہوئے. لیکن اس کی بات یہاں صاحب کافیہ نے نہیں کی. صاحب کافیہ بات کر رہے ہیں لائے نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو, اس کی جو صفت ہے اگر اس میں تین شرطیں پائی جائیں کہ وہ پہلی صفت ہو, مفرد ہو اور ساتھ ملی ہوئی ہو, تو اس کو آپ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب بھی. مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں لا رجلا ظریفا, اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں ظریفن, کیونکہ رجل کیا ہے, محل بعید کے اعتبار سے مبتدا ہے, مرفوع ہے. اور لا رجلا ظریفن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں رجل کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا اس کے محل قریب پر حمل کرتے ہوئے. اور جس میں یہ شرطیں پوری نہ ہوں تو اس کو مبنی تو نہیں پڑھ سکتے, البتہ اس پر رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.